Şitici. Şitici. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। और विशेष स्वागत आज हम करने जा रहे हैं भारत से पधारी डॉक्टर वीणा सिन्हा जी का, जो एक सशक्त संवेदनशील कवित्री हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं। आपका एमबीसी में हार्दिक स्वागत है।
जी, बहुत बहुत आभार।
आप मॉरिशस आई हमारे लिए, हमसे जुड़ी, हमारे लिए परिवार से जुड़ी, और साहित्यकार होने के नाते आपका एक विशेष लगाव जो है, मुझे लगता है अब मॉरिशस के साथ अवश्य हो जाएगा। जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं पर आप लिखती हैं। आपने, जहाँ तक मुझे पता है, आप चिकित्सक हैं।
जी, सही सुना है आपने।
जी, तो चिकित्सक होते हुए आपने इस लेखन के बारे में कैसे सोचा?
कल्पना जी, मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया आज आप लोगों से बात करने का।
जी,
तो मैं जैसा समझती हूँ कि चिकित्सक इस समाज का ही एक अंग है, स्वाभाविक रूप से।
जी,
तो समाज में जो कुछ भी घटित होता है उसको देखने की जो अंतर्दृष्टि है, वो चिकित्सक के पास सबसे पहले आती है, क्योंकि वो सब तकलीफों को जड़ से जब देखने जाता है, तो इस समाज का जो ताना बाना है, इसकी सघन बुनावट है, उसमें एक एक दिल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।
जी।
और जब आप जानते हो कि हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं करुणा और जो भावनाएँ जिस तरह से कहीं दबाई जाती हैं, कहीं वो विकृत हो जाती हैं, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन में हम आए दिन देखते रहते हैं।
बिल्कुल।
तो स्वाभाविक रूप से ये हमें झकझोरता है।
जी।
और इसने एक रास्ता लिया शब्दों के साथ में, तो एक प्रवाह बन पड़ा उसका।
एक डॉक्टर, एक चिकित्सक भी तो मानव है।
बिल्कुल सही कहा आपने।
और समाज में रहता है, तो जो सामाजिक विकृतियां हैं उनसे हमेशा जुड़ा रहता है, उनसे कुछ सीखता है। और ये तो कहते हैं ना, दो रास्ते ऐसे हैं जो आपस में मिलते रहते हैं, कहीं अलग हो ही नहीं
हो ही नहीं सकते।
हो ही नहीं
बिल्कुल
सकते।
सही आपने।
अभी आपने कहा कुछ ना कुछ जब कविताएं निकलती हैं उनके पीछे कुछ भाव होते हैं। चंद पंक्तियां आपको सुनाऊंगी। आंसुओं की जुबां नहीं होती।
क्या बात है।
आंसुओं की जुबां नहीं होती, कहानी फिर भी कह जाते हैं।
बिल्कुल।
रोक लो उनको जितना चाहो, रोक लो उनको जितना चाहो, आने हो तो आ जाते हैं। और मोतियों में तुलने वाले बेमोल छलक ही जाते हैं।
क्या बात है।
तो आप कवित्री हैं, आपका यहाँ पर हम स्वागत करते हैं इन चंद पंक्तियों के साथ में। कुछ पंक्तियाँ आपकी तरफ से भी हो जाएं।
बहुत सुंदर पंक्तियाँ सुनाई आपने, और मुझे लगा कि मैं अपनी सबसे पहले मंगल कामनाएं प्रेषित करूं हमारे श्रोताओं के लिए, आपके लिए और उन सभी के लिए जो अभी सुन रहे हैं इस वक्त, कि मंगल कामनाएं मात्र शब्द नहीं है।
बिल्कुल।
मंगल कामनाएं मात्र शब्द नहीं है, कभी ध्यान से सुनना आकुलता की गायत्री से प्रकंपित इन जैविक तरंगों को।
जी,
ये सार्वकालिक है।
बिल्कुल।
तुमसे एकात्म होने का भावातीत आलिंगन है। तुम्हारे साथ साथ चलती प्रार्थनाएं मात्र क्षणिक नश्वर गीत नहीं है।
जी,
वे अक्षांशों और देशांतरों से सतत प्रवाहित होती चंदन गंध है।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
तुम्हारे एकांत को भंग करती शुभ आशंसाएं संयोग मात्र नहीं है। यह जन्म जन्मांतरों से चलती सुविचारित चेतना है, जो अनुग्रह की भांति इस जन्म में भी साथ है।
बिल्कुल। मानव जीवन और हमारा साहित्य, इन्हें तो हम बांट ही नहीं सकते। जीवन से ही साहित्य उपजता है, और उस साहित्य से ही मनुष्य कुछ सीखता है, कुछ अपनी गलतियों को सुधारता है, आगे बढ़ता है। आपने कहा आप कविताएं लिखती हैं, उपन्यास लिखती हैं, कथाकार हैं, इनमें से कौन सी विधा जो है आपके हृदय के बहुत ज़्यादा करीब है?
देखिए, मूलतः मैं कवियत्री हूँ। कविताएं मैं बचपन से लिखती रही हूँ
जी,
और लगातार लिखी, और उनका जब संकलन आने का समय हुआ और या प्रकाशित होना शुरू हुई तो वो काफ़ी प्रोफेशनल व्यस्तताएं, परिवार, आप समझती हैं, स्त्री के लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं कि उसका परिवार, उसके बच्चे और अपना प्रोफेशन। तो जब ये प्रकाशित होना शुरू हुआ उसमें सभी का, पूरे परिवार का सहयोग रहा है। और फिर उपन्यास लिखे मैंने बाद में, क्योंकि कविताओं के साथ साथ जब मैंने खोजी दृष्टि से देखना शुरू किया तो एक तरह से वो रिसर्च ओरिएंटेड उपन्यास थे जो महाभारत जैसे महाकाव्य में से उद्भूत हुआ
जी।
और वो संस्कृत निष्ठ हिंदी में पहला उपन्यास आया मेरा
जी।
और इसके पहले काव्य संकलन आ चुका था, दूसरा उपन्यास चिकित्सकों के जीवन पर आधारित उपन्यास है।
यहाँ मैं उपन्यासों को लेकर आपसे एक बात साझा करना चाहूँगी। मेरी भी कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, उपन्यास विधा जो है आपको कहाँ तक लगता है कि आसान है या आपके लिए मुश्किल है या उसमें क्या परेशानियाँ आती हैं सामने?
देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं मूलतः कविता लिखती हूँ
जी।
कविता एक्चुअली कई बार पकती हैं कविताएं अंदर, बिल्कुल सही बात है, पर उसमें एक भावनात्मक पक्ष जो उसका है बहुत सशक्त होता है।
बिल्कुल।
जैसे मैं अगर किसी कविता को आपको, जैसे आपने भी अपनी कविता सुनाई, आपकी माँ को लेकर एक कविता थी
जी,
तो इसमें आप दो पंक्तियों में अपनी पूरी बात कह जाना चाहते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं कि गागर में
सागर
भरने जैसी बात होती है। जैसे एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ। जब खोज लेगा तू मेरी भीड़ भरी दुनिया में अपने लिए पूरी जगह, जब जान लेगा तू मेरी अंतहीन कथा में अपनी पूरी गाथा, उस क्षण समझ लेना कि प्रेम सूर्य काल आकाश में उदित हो गया है।
बिल्कुल।
तो
बिल्कुल।
बस कुछ पंक्तियों में हम अपनी बात कहते हैं, पर जहाँ तक उपन्यास का प्रश्न है, हम इसमें एक विचार को, एक पूरे परिवेश को शब्दों में बांधना और उसके साथ में हम उसको, वो एविडेंस बेस्ड हो, साक्ष्य आधारित रचना होनी चाहिए।
बिल्कुल।
जिसके लिए हमें अध्ययन की और खोज की आवश्यकता होती है। मतलब ये काफ़ी गहराई से अध्ययन करना होता है, क्योंकि मेरे जितने भी उपन्यास लिखे उनके लिए मुझे काफ़ी लंबी रिसर्च भी करनी हुई, क्योंकि जब मैं महाभारत पर आधारित कथा पे लिख रही थी तब एंशियंट हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री है, उसको पढ़ा कि हमारे कैसे ताने बाने थे, लोगों के व्यवहार कैसे थे, उनका वातावरण कैसा था, खाते क्या थे, बहुत सारी चीज़ें,
बहुत चीज़ें आ जाती।
तो एक विस्तृत फलक होता है इसका, तो जिसके लिए काफ़ी लंबी मेहनत लगती। मेरा अभी उपन्यास आज पब्लिशर के पास है, शायद अगले हफ्ते तक वो आ जाएगा, जो नालंदा के पतन को लेकर लिखा गया है, जो भारत में बुद्धिज्म का में गिरावट आई, उसका कारण क्या था, उसको एक खोज पड़ताल करती हुई रचना है। तो वो 8 साल से मैं लिख रही थी।
हम ये कह सकते हैं कि कविता जो है वो गागर में सागर है।
बिल्कुल।
जबकि उपन्यास जो है बिल्कुल उसके विपरीत
प्रक्रिया है।
बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। उसमें समय, उसमें ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि हो सकता है पूरे जीवन उसमें
समा जाता है,
जबकि कविता जो है वो चंद शब्दों में ही जीवन को बटोर लेती है।
बिल्कुल सही कहा आपने।
आपका एक उपन्यास है सपनों से बाहर
जी,
काफ़ी पुरस्कृत भी रहा है, चर्चित भी रहा है, ये किस विषय पर आधारित है या कुछ उसके बारे में बताएं?
सपनों से बाहर जो उपन्यास है ये चिकित्सकों की जो जीवनचर्या है कह लीजिए, भारत जैसे विकासशील देश में, और मैं चूंकि मध्य प्रदेश में मेरा एजुकेशन हुआ, पुरखे ज़रूर जो है मेरे ससुराल पक्ष से वो गाजीपुर या छपरा से थे, पर जो मूलतः मेरा परवरिश जो है वो मध्य प्रदेश में हुई, और वहाँ के जंगलों में या ट्राइबल एरिया में काम करते हुए या मेडिकल कॉलेज से गुजरते हुए, जो एक चिकित्सक इतने सपने लेकर मेडिकल कॉलेज में आता है और उसको हर कदम पे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अगर मैंने स्त्री रोग विशेषज्ञता हासिल करी तो उसके लिए जो 9 साल या 10 साल की यात्रा होती है, जिसमें हर वर्ष आप कुछ अलग तरह के चैलेंजेस से जूझते हैं, तो वो यात्रा, और फिर आप फील्ड में जाकर गरीबों की सेवा भी करना चाहते तो उसके लिए भी अपार चैलेंजेस हैं, तो उन का चुनौतियों का सामना करना और उनमें कुछ सकारात्मकता को देख पाना, ये सपनों से बाहर की मुख्यतः थीम है। और साथ ही साथ आपका व्यक्तिगत जीवन भी चलता है, जिसमें आपकी पत्नी, परिवार, उनसे तालमेल ना बैठ पाना, आप छोटी जगह पोस्टेड हो तो आपकी पत्नी अगर शहर से है तो वो वहाँ नहीं जाना चाहती, तो कितनी तरह की समस्याएं होती हैं, आपको समाज से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो सपनों से बाहर इस वजह से खास तौर से हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनके बीच में, डॉक्टर्स के बीच में काफ़ी चर्चित रहा।
सवाल एक ही है ना, जीवन तो एक ही है, उसे आप जिस गति से जिस दिशा में ले जाना चाहें ये आपके ऊपर है, और कोई भी दिशा कोई भी गति ऐसी नहीं होती कि जो आराम से चलती जाए, हर गति में कुछ ना कुछ अवरोध तो अवश्य होते ही हैं, और हमें जीवन जब जीना है कुछ करना है तो उसके आगे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला, मत सोचो जीवन ने हमें क्या दिया है।
दिया, सही बात है,
मत सोचो जीवन ने हमें क्या दिया है, क्या छीना और क्या लिया है,
क्या बात है।
अगर आंसू दिए हैं तो मुस्कान भी है,
बिल्कुल,
अगर आंसू दिए हैं तो मुस्कान भी है, याद रखो सभी ने यूं समझौते किए हैं, हम अकेले नहीं हैं उन समझौतों में, सभी ने कहीं ना कहीं किसी दिशा में किसी समय समझौता अवश्य किया है, बिना समझौते हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
क्या बात है।
चिकित्सक होते हुए आपकी कविताएं हैं, कहानियां हैं, आपका अपना जीवन है, अपने अपनी आगे बढ़ने की अपनी एक सीमाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, जीवन जो है वो ऐसे ही सीधा तो नहीं चलता, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन इधर उधर लगा ही रहता है, तो एक चिकित्सक होते हुए आप अपनी कहानियों के साथ अपनी कविताओं के साथ किस प्रकार मेल करती हैं?
एक्चुअली जैसा आपने कहा कि ये हर स्त्री की कहानी है कि वो कई मोर्चों पर एक साथ जूझती है
जी।
और स्त्री को ईश्वर ने कुछ ऐसा दिया हुआ है कि वो जूझ लेती है और अपना रास्ता बना लेती है, एक नदी के समान। तो मुझे लगता है ये स्त्री का सामर्थ्य है
जी।
और उसने मुझे, मेरे प्रोफेशन में जो महिलाएं मिली उन्होंने, मेरी माँ ने, मेरी बेटी ने और मेरी बहनों ने, जो भी मेरे संपर्क में आने वाली स्त्रियां हैं, वो सब कुछ मुझे, जैसे आज आपसे मिली तो मैं कुछ ना कुछ आपसे लेके जाऊंगी, तो ये जो हम लोगों के बीच में लेन देन का जो है ये हमें मजबूत बनाता है और यही तालमेल बनाना सिखाता है। कि मैंने देखा कि आप अगर दो काम कर रही हैं, आपने क्या किया, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपसे सीखती हूँ, आपने ये सब करते हुए परंपराओं का निर्वहन कैसे किया, तो ये सीखने लायक चीज है, तो मैं आपसे सीखूंगी,
बिल्कुल।
तो ये प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं जो हमारे जीवन में रहने वाली चीजें
जी।
तो मैं इस पर आधारित अपनी एक कविता आपको सुनाती हूँ
जी।
कि स्त्री के लिए आज तक वह किसी भी औरत से उस तरह प्यार नहीं कर पाया जैसा वह करना चाहता है। दरअसल वह जब भी बालों में हाथ फेरना शुरू करता है, उसके पोरों के नीचे सरक जाता है कोई ताजा घूमड़ या कोई गहरा घाव,
बिल्कुल,
और उस घाव में वह देखने लग जाता है उस औरत के आंसू, दरवाजे या पलंग के कोने से टकराता उसका सिर, उससे बह आया खून और वह खींच लेता है अपना हाथ। जब भी किसी औरत की पीठ पर लिखना शुरू करता है कोई प्रेम कविता, तो उसे दिखाई पड़ने लगते हैं कुछ नीले दाग, कुछ खरोंचे, और वह समेट लेता है अपने हाथ। अब भी ढूंढ रहा है एक ऐसी औरत की आंखें जिनके भीतर आंसुओं की जगह लहराता हो प्रेम का दुर्निवार ज्वार, और उस औरत की तरह प्यार कर पाए जैसा वह करना चाहता है।
बहुत खूब, बहुत खूब, आपके साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आपकी बातें, आपकी कविताएं, आपकी कहानियां आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएं, हमारी तो यही मनोकामना है। साथ ही हम कहना चाहेंगे आपकी जीवन यात्रा शुभकारी हो, खुशियों और प्रेम से लदी क्यारी हो, ऊंच नीच जीवन का तो फलसफा है, ऊंच नीच जीवन का तो फलसफा है, पर महकती रहे जो एक फुलवारी हो।
बिल्कुल,
हम यही कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपने इसको ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार जी।
नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर।